This is the Epilogue Audio Experience. Nine XM Song Secret.
बचपन से माँ की लोरी से हमारे म्यूजिक का सफर शुरू होता है, जो हमेशा बस चलता ही रहता है। कहते हैं कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, सच है, पर हर सॉन्ग का सीक्रेट जरूर होता है। गाना कैसे बना, कहाँ बना और भी बहुत कुछ, और ये सब कुछ आपको हमारे इस पॉडकास्ट में मिलेगा। हाय, माय नेम इज शेफाली और आप सुन रहे हैं 9XM सॉन्ग सीक्रेट ऑन ईपीलॉग मीडिया, एंड यू कैन लिसन ऑन ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट और ऑन योर फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग एप्स, जहां आपको आपके फेवरेट सॉन्ग्स के पीछे के इंटरेस्टिंग सीक्रेट सुनने को मिलते हैं। वैसे अगर मैं आपसे आपका फेवरेट गाना पूछूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? नहीं ना, हर मूड का क्योंकि अपना अलग गाना होता है, हर फील का अपना एक अलग गाना होता है। ऐसे में फेवरेट गाना बता पाना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हम सबकी फेवरेट गानों की लिस्ट ना थोड़ी लंबी है। अब ऐसे में जब भी गाना बनता है तो उसकी भी अपनी एक अलग कहानी होती है, और ये कहानी मैं इस पॉडकास्ट में आपको सुनाने वाली हूँ, और ये सुनाएंगे वो खुद जो उन सॉन्ग्स के फर्स्ट क्रिएटर्स रहे, चाहे वो सिंगर हो, कंपोजर हो या फिर लिरिसिस्ट। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में वो हैं जो जब गाना लिखते हैं ना तो उस गाने पे लिखा होता है सुपर हिट, वो जो राजस्थान से आते हैं लेकिन फ्लेवर पूरा इंडियन लाते हैं। उनका पहला बॉलीवुड गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि बस। आई एम टॉकिंग अबाउट कुणाल वर्मा, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत खूबसूरत लिरिसिस्ट है। कुणाल, वेलकम टू माई शो जिसका नाम है 9XM सॉन्ग सीक्रेट। कुणाल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सुपर डुपर ट्रैक हंसी बन गए से। सॉन्ग आज भी रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह प्ले होता है, जिसे लिखा है ऑफकोर्स आपने, जिसे कंपोज एंड गाया है अमी मिश्रा ने। सो टेल मी समथिंग विच वी डोंट नो अबाउट दिस सॉन्ग।
हंसी बन गए के बारे में लोग ये नहीं जानते कि ये गाना 2009 में लिखा हुआ था।
ओके
ओके, और हंसी जो गाना था वो जिस कंपोजर ने बनाया है, जिनका नाम है अमी मिश्रा
जी, जी,
वो मुझे मिले थे भाई साहब ओरकुट पे। उस वक्त मैं अपनी आईडी पे कैप्शन था वो लिखा होता था कि अपकमिंग लिरिसिस्ट। 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, 89 की बात कर रहा हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं है। उस वक्त मैं अमी से मिला था, अमी के साथ में मैंने फ़ोन पे जैम करना स्टार्ट किया था, तो ये गाना हमने बनाया था। और जब अमी मुंबई शिफ्ट हुआ, उसने ये गाना भेजा था भट्ट साहब को।
ओके,
तो ये गाना सेलेक्ट हुआ था खामोशियां मूवी के लिए, और फिर ये गाना आया हमारी अधूरी कहानी में।
ओके,
तो ये कुछ ऐसा था जो आप लोगों को नहीं पता है, जो मैं आपको बता रहा
हूँ।
एंड एक सबसे अच्छी बात कि इसका जो फीमेल वर्जन है वो उसका जो सेकंड अंतरा जो है, क्या खूब रब ने किया बिन मांगे इतना दिया, वो अंतरा मैंने महेश भट्ट जी के सामने बैठ के लिखा था।
अच्छा,
और उनके सामने ये गाना फाइनल हुआ था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप नहीं जानते इस गाने के बारे में। एंड एक चीज और आप नहीं जानते इस गाने के बारे में कि इस गाने के बाद मुझे मतलब ये मेरा पहला गाना था, मुझे बेस्ट अपकमिंग लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर में नॉमिनेशन मिला था। इस गाने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और आप सब लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ।
क्या बात है, और कुट का जमाना याद आ गया। एनीवेज, कुणाल, जब आपने ये गाना लिखा था हंसी बन गए, क्या आपको लगा था कि ये गाना इतना बड़ा बन जाएगा?
ओके शेफाली, जब ये गाना मैंने लिखा था तब मुझे ये तक नहीं पता था कि ये कभी किसी फिल्म में आएगा।
ओके
ओके, मैं और अमी इसको एक एवरेज गाना मानते थे और हमने इसको काफी वक्त तक पिच नहीं किया था गाने को। और जब ये फिल्म में आ गया था, जब रिलीज हो गया था, तब तक गाना हिट नहीं था। फिल्म रिलीज हो गई थी तब तक गाना हिट नहीं था। मुझे लगता था कि मेरा पहला गाना आया वो फ्लॉप हो गया।
ओके,
बट रिलीज के बाद जब गाने ने पिकअप लिया और चलना शुरू हुआ गाना, हर FM पे ये गाना फ्रिक्वेंटली आज भी बजता है, तो मुझे काफी वक्त बाद ये एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि ये गाना सच में बहुत बड़ा गाना बन चुका है। और मुझे कोई इस गाने से एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं थी कि ये गाना इतना मुझे नाम देके जाएगा और नॉमिनेशन देके जाएगा और अवार्ड भी मिला था इस गाने को बेस्ट डेब्यू सॉन्ग में।
क्या बात है।
तो मैंने कोई उम्मीद नहीं करती इस गाने से, लेकिन शायद हो सकता है कि मैंने जब ये गाना लिखा हो किसी के लिए तो सच्चे दिल से लिखा हो, और सच्चे दिल से लिखी हुई चीज़ें कभी भी
बिल्कुल,
ख़राब नहीं जाती हैं।
बहुत सही कहा आपने कि सच्चे दिल से निकली हुई चीज़ें ना कभी खराब नहीं जाती। कुणाल, प्यार और सच्चे दिल की बातें अगर आपके गानों के थ्रू सुनने को मिलती है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसे ही आपका एक गाना है जिसे सुनने के बाद सच में दिल को बहुत सुकून मिलता है, एंड दैट सॉन्ग इज चले आना। व्हाट अ लवली सॉन्ग, जिसे लिखा है ऑफकोर्स आपने, कंपोज किया है अमाल मलिक ने, गाया है अरमान मलिक ने। क्या है इस सॉन्ग के पीछे की स्टोरी?
वो गाना अमाल ने कंपोज किया था, अरमान ने वो गाना गाया था। उस गाने को मतलब कह सकते हो कि वो एक वापस मुझे इंडस्ट्री में लाने के लिए वो गाना एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं हंसी लिखने के बाद जयपुर चला गया था और अपनी वाइब्स में रहता था, अपना काम करता था, और मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था कि क्या होगा, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर था, मैं सिर्फ अपनी राइटिंग करता था। एक बार मतलब ऐसा हुआ था कि अमाल का मेरे पास फ़ोन आया था रात को 1:30 बजे, बोले भाई मेरे को कुछ सैड कुछ चाहिए। तो अमाल को ये नहीं पता था कि मैंने ऑलरेडी कुछ लिख के बैठा हुआ था, कुछ आइडियाज़ मेरे माइंड में थे और मैंने एक रात पहले ही वो सब लिखा था। उस रात को मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तब मैंने ये कुछ पूरा ये थॉट पूरा उस टाइम लिखा था। और सेकेंड डे जब अमाल का फ़ोन आया तो मैंने उसको बोला था कि यार मैंने कुछ मेरे पास कुछ पढ़ा है, आप मुझे ना कुछ हम करके भेजो, मे भी शायद वो इस पे फिट हो जाए, काम आ जाए। तो अमाल ने मुझे एक धुन भेजी थी, अमाल ने मुझे गा के जब हम करके भेजा तो मुझे लगा कि ये पूरा पार्ट ऐसे कैसे इस कॉम्पोजिशन पे जा रहा है। और मैंने अमाल को जब जब पहले तो मैंने अमाल को यही बोल दिया था कि यार मेरा मूड ही नहीं है काम करने का और मैं किसी अलग ट्रिप में हूँ, बट जब अमाल ने मुझे बोला कि मेरे को एक सैड सॉन्ग चाहिए, अगर है तो बताओ मुझे, तो फिर मैंने लगा कि मुझे लगा कि ट्राई करते हैं, शायद हो सकता है कि जो मैंने कुछ लिखा हुआ है उसमें से निकाल के और इस मीटर में फिट कर दूं। और हुआ भी ऐसा ही, जब अमाल ने ये गाया दरारा 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 दरारा, तो मुझे लगा कि ये एक कनेक्शन है शायद म्यूजिक का मेरा आपस में, कि जो चीज़ मुझे तकलीफ़ में मैंने लिखी है वही चीज़ मुझे कहीं लेके जा रही है। तो जब मैंने अमाल को ये लिख के भेजा कि जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो मेरी जाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना, तो ही वॉज लाइक कि भाई ये ही चाहिए था,
क्या बात है।
एंड दैट्स हाउ ये गाना बना। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाने में कुछ चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता है। इस गाने में जो आप लाइन सुनते हो कि जुदा हम हो गए माना मगर जान लो मेरी जाना, तो उसकी जगह पहले था कि मगर सुन लो मेरी जाना। तो ये अजय देवगन का एक इनपुट था कि सुन लो की बजाय हम जान लो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा भी और पावरफुल भी लगेगा, और हमने उसको फॉलो किया और वो हुआ भी, वो वर्कआउट भी किया, वर्क भी किया और पहले से ज़्यादा बेहतर साउंड किया, हमने इसको फिर वैसे ही रखा। इसमें एक लाइन और थी कि मैंने लिखा था कि तेरा हमारा था भी क्या वैसे, एंड ये भी अजय देवगन का ही सजेशन था कि उन्होंने बोला कि मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे। तो ये कुछ कुछ करेक्शंस अजय देवगन सर ने करवाए
वाह,
और गाना बना और गाना सुपर हिट हुआ, एंड बाकी सब आप लोगों के सामने है।
बिल्कुल, इट्स अ सुपर हिट ट्रैक। कुणाल, अब मैं जिस गाने के बारे में आपसे पूछने वाली हूँ, उस गाने को कंपोज किया है आपने और आपके साथ रोंगो ने, एंड एज अ कंपोजर आपका डेब्यू हुआ उस सॉन्ग के साथ। लिखा ऑफ कोर्स आपने है, गाया है जुबिन नौटियाल ने। आई एम टॉकिंग अबाउट फिर मुलाकात। व्हाट अ ब्यूटिफुल मेलोडी, इसके बारे में आप कुछ बताइए।
हाँ शेफाली, ये इसके पीछे की जो कहानी है वो ऐसी है कि मैंने पहले भी राजस्थान में काफ़ी काम किया है एज ए कंपोज़र, और मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, काफ़ी हिट्स दिए हैं उस वक्त भी, बट मैं जब मुंबई गया था तो मेरा फोकस सिर्फ राइटिंग पे ही था, ठीक है। तो मैं कुछ गाने बना रहा था और कुछ गाने मैंने बना रखे थे, कुछ मैं नए बना रहा था। तो जो ये गाना है फिर मुलाकात, वो गाना मुझे किसी ने एक सिचुएशन दी थी कि मेरे को ऐसे ऐसी सिचुएशन पे कोई गाना चाहिए जिसमें मतलब मिलने को लेके ऐसा कुछ उसने बताया था, और मेरे को सैड सॉन्ग चाहिए। तो मैं सुबह जब चाय पीने जब बाहर गया था, क्योंकि मेरी पहले आदत थी कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के और चाय पीने जाता ही था बाहर,
ओके
तो पता नहीं एकदम से कोई कनेक्शन मेरे को ऐसा माइंड में आया और मैं वो गाना चलता चलता लिख रहा था, लिखते 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 लिखते, और मैं चाय की दुकान तक गया, चाय पी रहा था, तब तक मेरे हाथ चल रहे थे, मैं गाना लिख रहा था। और जब मैंने पूरा गाना लिख लिया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने मुखड़ा लिखा था पूरा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कहा एक धुन मेरे माइंड में चल रही थी इस गाने के लिए। तो मैंने वो मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया और उसमें वो ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर लिया गाना, ठीक है। तो वो जब मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने घर आके सुना, तो वो मुझे लग रहा था कि मैंने कहा नहीं यार ये गाना किसी बहुत अच्छी जगह जाना चाहिए और ये गाना कुछ और बनेगा। देन फिर मैंने वो गाना बैठ के गिटार पे रिस्ट्रक्चर किया, उसके जो डिफरेंट कॉर्ड्स थे उस पर काम किया, क्रॉस पे काम किया, देन फिर नया अंतरा लिखा, और ऐसे करके फिर मैंने ये गाना पूरा बनाया। और ये गाना बना के मेरे पास रखा हुआ था। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है कि मेरी कंपोजर की कहानी बॉलीवुड में कैसे आई। जो शिवम है जो टी सीरीज का सारा म्यूजिक हैंडल करते हैं, मैं अमाल के घर था, मैं किसी काम से, हम लोग कुछ किसी गाने पे काम कर रहे थे, आई गेस वो गाना था चले आना, आई गेस सॉरी चले आना नहीं था, वो गाना था देर से ही सही, जो इसी फिल्म का गाना था, उस गाने में हम लोग काम कर रहे थे, तो शिवम वहीं था। तो मैं चाय पी रहा था अमाल की बालकनी में और मैं ये गाना उसको मैंने सुनाया शिवम को, मैंने कहा भाई आपको एक गाना सुनाता हूँ मैं। तो शिवम ने बोला गाना बहुत अच्छा है, आप मुझे भेज दो एक बार, मैं भूषण जी को सुनाता हूँ गाना। तो ये गाना जब शिवम ने भूषण जी को ये गाना सुनाया तो उन्होंने पूछा कि ये कॉम्पोजिशन किसकी है, तब शिवम ने बोला कि ये कुणाल की कंपोजिशन है। तो उन्होंने पूछा कि कुणाल कंपोज भी करता है, बोले हाँ वो कंपोज करता है, उसने मुझे बताया। तो भूषण जी ने बोला कि कुणाल को बोलो मुझे दो तीन गाने और सुनाए एक बार अपने कंपोज करे हुए। तो मैंने भूषण जी को फिर दो गाने और भेजे और वो दोनों गाने भूषण जी ने लॉक किए और मुझे वापस बुलाया उन्होंने ऑफिस। उन्होंने बोला कि बेटा तू राइटर तो है ही है बट तेरी कॉम्पोजिशन बहुत कमर्शियल है, मतलब बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है तेरी, तेरे को कंपोज करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों गाने तो मैं ले रहा हूँ जो तूने मुझे दिए हैं, और आगे भी तू कंपोज कर, तेरे को जब भी कोई गाना नया बनाता है जस्ट मुझे भेज दे
क्या बात
और मैं
है।
तेरे को बता दूंगा। वहां से फिर भूषण जी ने ये गाना दिया, इमरान हाशमी की जो फिल्म थी वाई चीट इंडिया, उसमें ये गाना था, और मुझे पता चला कि इमरान हाशमी फिल्माया जा रहा है गाना, और मतलब मेरे लिए एक लक फैक्टर रहा है इमरान हाशमी के साथ में काम करना, क्योंकि मेरा पहला गाना उनके साथ में ही था हंसी, तो मेरा एज ए कंपोजर फर्स्ट गाना इमरान हाशमी के साथ में ही था फिर मुलाकात। तो ये क्वाइट एक इंटरेस्टिंग जर्नी मेरी कंपोजर की शुरू हुई इस गाने के बाद में। तो काफी बड़ा गाना था मेरे लिए, अगर मैं देखूँ तो मेरे करियर के लिए।
कुणाल, आपने बहुत कमाल के गाने लिखे हैं और आपके सारे ही गाने हिट हुए हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, कुणाल एक पंजाबी गाना है, बहुत बड़ा सुपरहिट था, ख्वाब बाय अखिल। एंड देन उसी गाने का हिंदी वर्जन लिखा आपने, दुनिया, एंड वो भी उतना ही सुपरहिट हुआ, जिसे गाया है खुद अखिल ने विद ध्वनि भानुशाली। एंड मैंने उस गाने को लूप पे सुना है। इस गाने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए।
इस गाने के पीछे ना कुछ मेरे कनेक्शंस हैं शायद, मुझे ये लगता है, क्योंकि ख्वाब गाना मुझे पंजाबी गाने, कुछ कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनता नहीं पंजाबी। ख्वाब एक ऐसा गाना था जो मुझे, मतलब मेरा हमेशा से फेवरेट गाना था ख्वाब। तो हुआ ये था कि ये गाना काफ़ी सारे राइटर्स ने ट्राई किया था, और जो मैडॉक फिल्म्स के जो ऑनर हैं दिनेश विजन, उन्होंने लास्ट में शिवम को थक के बोल दिया था कि भाई मुझे एक ऐसा राइटर दे दो जो बिल्कुल सिंपल लिख के दे दे, मुझे वो बातें ही नहीं चाहिए गाने में, गाने जैसी मुझे सिर्फ बातें चाहिए, और कुछ एक कुछ भी ऐसी बात दे दे इस गाने में कि जो मुझे लगे कि ये वाओ। तो शिवम ने फिर बोला कि कुणाल कर सकता है, मैं कुणाल को बोलता हूँ। तो मुझे फिर बोला गया कि कुणाल शाम को मिलते हैं अभिजीत वगानी के घर पे, ठीक है। तो अभिजीत वगानी से मेरी दोस्ती, मेरा जो एक रिलेशन जो एक ब्रदर की तरह है, वो इस गाने के थ्रू शुरू हुआ, क्योंकि जब शिवम लेट आया था थोड़ा सा, मैं पहले ही पहुंच गया था, तो जब शिवम आया था तो हम लोग बातें कर रहे थे मैं और अभिजीत, और शिवम बोला कि यार तुम काम नहीं कर रहे और तुम लोग चिल कर रहे हो बैठ के। तो अभिजीत ने बोला भाई हमने जितना करना था उतना काम हो चुका है, आप सुन लो एक बार। तो उसमें एक लाइन थी जो मैंने लिखी थी कि तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तो वो मुखड़ा जब दिनेश जी को भेजा कि सर ये देख लो एक बार, और अगर ये अच्छा लग रहा है तो इस पे आगे काम कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये लाइन किसने लिखी है कि तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तो बोला कि कुणाल ने लिखी है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को यही चाहिए था, कल मेरे ऑफिस आओ, इसको कंप्लीट करते हैं बैठ के और लॉक करते हैं गाना।
ओके
देन मैं, अभिजीत, शिवम तीनों दिनेश जी के ऑफिस गए, वहाँ पे हमने इस गाने के बारे में, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे यही चाहिए था जो तुमने ये लाइन दी है कि तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। ये लाइन का जो थॉट है, इतना सिंपल वे में इतनी बड़ी बात बोली है, यही मुझे इस गाने में चाहिए, मुझे पूरा गाना सिर्फ ऐसी बातों से भर के दे दो, मेरा गाना लॉक है। तब जाके फिर हमने मतलब बैठ के उनके सामने डिस्कशन किया, अभिजीत के साथ बैठा, और ये गाना हमने 2 सिटिंग में पूरा गाना ख़त्म कर दिया।
वाह
इस तरह से ये गाना बना। ये गाना 2 या 3 फिल्म्स, अलग अलग फिल्म्स में जाके वापस ये आया, इस फिल्म में
ओके
जिसमें ये आया, लुका छुपी में। और दूसरी चीज़ थी कि ये गाना जो कि आपने बोला कि अखिल का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिट गाना था, उसको रिक्रिएट किया गया। तो हाँ, मुखड़ा जो था वो बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन पे था, बट पूरा जो उसका अंतरा था, उसका आउटरो था, वो सब चेंज किया। ये गाना जब डब हो रहा था, तब तक इस गाने में करेक्शन चल रहे थे, क्योंकि जो आउटरो था लास्ट मोमेंट पे डायरेक्टर ने बोला था कि हमको ये लाइंस, मतलब जो आप दिखा रहे हो ना कि इसमें सेपरेशन हो गया, लास्ट में हमने लिखा था कुछ जुदाई वाली बात थी आउटरो में, तो इधर गाना डब हो रहा है और इधर मैंने वो जो आउटरो की जो लाइन थी वो सारी मैंने उस वक्त बैठ के उनके सामने लिखी और हमने गाना डब किया। हुआ ये कि जब फिल्म के गाने रिलीज हुए, मैं वेट कर रहा था कि दुनिया कब आएगा, दुनिया कब आएगा, दुनिया कब आएगा, और मुझे इस गाने से 0 एक्सपेक्टेशन थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गाना हिट होगा और इतना बड़ा हिट होगा। ये गाना 5th नंबर, मतलब लास्ट नंबर पे इन लोगों ने रिलीज़ किया मूवी में, तो मुझे पक्का पता था कि ये लास्ट गाना रिलीज़ हुआ है, नहीं चलेगा। एंड ये गाना जिस दिन रिलीज़ हुआ, उस दिन से ये गाना ऐसे बूम करके निकला और हर जगह से इसके जो रिव्यूज़ थे वो बहुत अच्छे आना शुरू हो गए। और ये गाना टी सीरीज़ का पहला गाना था जिसने 100 मिलियन स्ट्रीम पार किए थे। तो इस गाने ने भी अपना एक माइलस्टोन क्रिएट किया है और आज भी बजता है, आज भी हर जगह गाना बहुत लोग प्यार से सुनते हैं।
ऑल राइट कुणाल, अब मुझे जानना है एक तिगड़ी के बारे में, एंड दैट इज़ यू, पायल देव एंड आदित्य देव। आप तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दैट वी ऑल नो, एंड आप तीनों ने मिल के एक गाना भी किया, एंड दैट सॉन्ग इज़ तुम ही आना फ्रॉम द मूवी मरजावा। व्हाट अ लवली सॉन्ग। क्या है इस सॉन्ग के पीछे का सीक्रेट?
जब पहली बार मैं पायल देव और आदित्य देव से मिला, तो उन्होंने मुझे कुछ गाने सुनाए थे। उनमें
ओके
सबसे पहला गाना सुनाया था ये, उन्होंने मुझे कॉम्पोजिशन सुनाई थी,
ओके
दा रा 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 दा रा 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 रा। तब मैंने पायल भाभी को बोला था कि मैंने कहा जब भी भाभी मैं ये गाना आपसे मांगू कि मुझे लिखना है, मुझे उस दिन ये गाना आप दे देना,
ओके
मैं ये गाना लिखूंगा क्योंकि बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद हमने काफ़ी गाने किए, इस गाने पे हम लोग कभी चर्चा ही नहीं, कभी बैठे ही नहीं। एक दिन सडनली मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने बोला भाभी आपने मुझे गाना सुनाया था, वो गाना मुझे एक बार भेज सकते हैं आप? तो उन्होंने मुझे गाना भेजा और मैं लेट नाइट जब भी कुछ लिखता हूँ बहुत अच्छा आता है सोने से पहले। तो मेरे को नींद आ रही थी, तो मैंने ये सुनते सुनते मैंने लाइन लिखी थी कि तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। और ये लिखते ही मुझे नींद आ गई थी। मैं सुबह जब उठा तो मुझे ये याद था कि मैंने कुछ लिखा है, और मैं ऐसे जल्दी उठ के मोबाइल चेक किया कि वो सेव है या नहीं, बिकॉज मुझे याद ही नहीं था मैंने क्या लिखा। और मैंने देखा तो वो लाइन मेरे सामने थी, मैंने कहा ये गाना मिल गया है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने कहा भाभी रात को आ रहा हूँ और बैठते हैं, इस गाने को कंप्लीट करते हैं, ये गाना बहुत अच्छा बनेगा। तो उस वक्त जब मैं वहाँ गया गाना लिखने के लिए, तो उन्होंने जुबिन को भी बुला लिया था वहीं पे, क्योंकि गाने का अंतरा रेडी नहीं था। तो भाभी ने बोला कि कुणाल भाई आप लिख दो, आपको जो अच्छा लगता है मैं इसको फिर कंपोज करती हूँ। तो मैंने फिर वो लाइन लिखी, मेरी दहलीज से होकर बाहरें जब गुजरती हैं। आदि भाई उस टाइम पे किसी और डायरेक्टर के साथ बैठ के अपना एक म्यूजिक सेशन कर रहे थे, मैं, जुबिन और पायल भाभी बाहर बैठ के, हम लोग हॉल में बैठ के गाना बना रहे थे। तो जब पहला अंतरा बना तो हम लोग डिस्टर्ब करने के लिए आदि भाई को एक्साइटमेंट में पहुंच गए, तो वहाँ वो डायरेक्टर बैठे थे, तो उनको जब ये सुनाया तो आदि भाई बोले कि भाई बहुत अच्छा है और इसको कंप्लीट करो, ये गाना नेक्स्ट लेवल जाएगा। फिर हम बाहर आए, फिर हमने सेकंड अंतरा कंप्लीट किया, एंड ट्रस्ट मी जब मैंने वो लाइन लिखी थी कि तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम्हें लाना। मैं अंदर
या
से मेरा एकदम जो गुबार होता है वो निकल के एकदम बाहर आ गया था कि ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी लाइन दे दी, मैं जिंदगी भर इससे अच्छी लाइन लिख नहीं पाऊंगा।
क्या बात
वो
है।
फीलिंग मेरे अंदर आ गई थी। और जब मैं अंदर आदि भाई के पास जाके हम लोगों ने वो गाना सुनाया कि आदि भाई ऐसा सा कुछ बन रहा है, तो उस लाइन पे आदि भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि
वाह
भाई मैंने 15 साल में इतना खूबसूरत गाना नहीं सुना, इसको अभी डब करते हैं। और जुबिन ने वो गाना गाया, और जुबिन ने जो गाना उस दिन गाया था ये, उसके बाद जुबिन ने वो गाना दोबारा डब नहीं किया उसने,
ओके
क्योंकि जिस फील में उसने गा दिया था वो फील दोबारा नहीं आ सकता था, क्योंकि उस दिन एक वाइब थी हम सब में,
या
एक जो होता है ना कि एक सबकी जो रूह थी वो एक होके उस गाने को हमने बनाया था। इस गाने को लेके सेकंड डे आदि भाई मेरे घर आए थे रात को, उन्होंने बोला कि भाई ये तो कुछ अलग ही लेवल साउंड करा है, अब सुनो।
वाओ
हम लोग उस टाइम पे 8-9 लोग थे घर पे, मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, सब लोगों ने गाना सुना, 8 बार रिपीट पे हमने वो गाना सुना,
ओके
और सबकी आंखें एकदम वेट थी कि बोले यार ये क्या चीज़ बना दी। उस
वाओ
गाने को लेके मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर से ना एक काफ़ी चीज़ें, मतलब मैं अंदर से खाली हो गया हूँ। तो ये गाना मैं जब आदि भाई को बोला मुझे भेज दो भाई, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अपनी एक अलग वाइब में जाना है, क्योंकि इस गाने को मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं गाना किस लिए लिखा हुआ है। और मैंने ये गाना लिखने के बाद मैंने अपने ब्रदर, जो मेरा एक दोस्त है, जो मेरा बहुत ज़्यादा प्यार जिसके साथ में है, मतलब कहते हैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, मैंने उसको फ़ोन किया कि मैंने कहा भाई मुझे तो कोई गाना सुनाना है, और मैं उसके लिए स्पेशली आ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं तेरे साथ बैठ के ही सुनना चाहता हूँ। तो जब वो मुझे एयरपोर्ट लेने आया, हमने गाड़ी साइड में लगाई, मैंने गाना उसको प्ले किया। वो बंदा बहुत स्ट्रांग है, मतलब मैंने उसको कभी रोते नहीं देखा। तो जब गाना ख़त्म हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखा, तो वो इतना इतना ज़ोर ज़ोर से रोया उस दिन, बोला कि आई एम मिसिंग माई फादर, क्योंकि उनके फादर नहीं है। तो उस बात को लेके फिर मैंने, मुझे लगा कि यार इस गाने में इतनी पावर है कि ये आदमी इतने सालों में, 25 साल हो गए मुझे उसका रहते हुए कभी रोते नहीं देखा, और आज ही रोया, वो भी इतना इतना ज़्यादा। यही गाना मैंने मेरे फादर को जब सुनाया तो मेरे फादर की आंखों में आंसू थे, उन्होंने बोला कि अब मैं कह सकता हूँ कि तू बहुत अच्छा राइटर बनेगा।
क्या बात है।
तो ये गाना मेरे लिए इतना ही स्पेशल, मतलब मैं बता नहीं सकता कि इस गाने को मैं कितना सुना है। मैं खाली सड़कों पे जयपुर की घूमा हूँ इस गाने को सुनता हूँ, सुबह सुबह गाड़ी लेके निकल जाता था, और इस गाने का मैंने बहुत वेट किया है। ये गाना बनने के बाद मैंने भूषण जी को सुना दिया था, जब वो खाना खा रहे थे तब मैंने उनको गाना सुनाया था कि मैं आपके लिए चीज़ लेके आया हूँ, और उन्होंने वो गाना उसी वक्त लॉक किया था। और फिर ये फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया कि मरजावा फिल्म में गाना आ रहा है, एंड इसके बाकी और 3 वर्जन और उस फिल्म के अकॉर्डिंग बने। उसके बाद गाना रिलीज होता है, उसके बाद जो भी है वो हिस्ट्री है, आप सबको पता है।
कुणाल, सच में आपके कोई भी सॉन्ग उठा के सुन लो ना, आंखें नम हो ही जाती हैं एंड दर्द भी कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है। कुणाल, लास्ट 2 सॉन्ग्स जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं एंड दैट बोथ सॉन्ग्स आर फ्रॉम द मूवी मलंग, मलंग टाइटल ट्रैक एंड हमरा, दोनों ही सॉन्ग्स आपके कमाल के हैं। इन दोनों सॉन्ग्स के पीछे का ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग सीक्रेट है जो आप हमसे शेयर करने वाले हैं?
इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब मुझे गाना लिखने के लिए मोहित सर ने बुलाया था, तो उस वक्त हम दो राइटर ही गाना लिख रहे थे, हर्ष निम्बाचिया और मैं, दोनों बैठे थे। हम लोग वेद का वेट कर रहे थे, वेद आया, और जैसे ही वेद आया मुझे लगा कि मैं इस इंसान को जानता हूँ शायद। तो मैंने वेद को पूछा कि भाई तुम आरजे थे क्या एमपी में? तो उसने बोला कि हाँ भाई मैं आरजे था। तो मैंने उसको बोला कि याद करो कि तुमने मुझे एक बार कॉल किया था और हम ओरकुट पे हम लोग मिले थे, और ऐसा ऐसा उसको बताया पूरा। तो वो मेरे को पहचान गया, कहता यार भाई ये कमाल की बात है कि आपको ये बात याद है कि हम तकरीबन तकरीबन 10-12 साल पहले हमने एक दूसरे के टच में आए थे, और आपको ये बात आज तक याद है। तो वहाँ पे वो एक बात होती है ना कि जैसे दो बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, वैसा कनेक्शन वहाँ जुड़ गया इस गाने के साथ में। और फिर मैंने और हर्ष ने मिलके गाना कंप्लीट किया। इस गाने की जो मेरे लिए जो स्पेशल बात थी वो ये थी कि एक तो ये फिल्म का टाइटल ट्रैक था, और दूसरा ये मेरी थर्ड फिल्म थी मोहित सर के साथ कंटिन्यू। पहली फिल्म थी हमारी अधूरी कहानी, दूसरी हाफ गर्लफ्रेंड थी, और थर्ड फिल्म थी मलंग। तो ये मेरे लिए एक हैट्रिक थी, तो मैं चाहता भी था कि मेरे को इस फिल्म में गाना चाहिए था, और फाइनली मुझे गाना मिला। और टाइटल ट्रैक था, तो ये एक खुशी की बात थी मेरे लिए। उसके बाद मुझे मोहित सर ने वापस बुलाया और एक कॉम्पोजिशन मुझे सुनाई जिसका नाम था हमरा। गाने का नाम हमरा नहीं था, गाने का नाम उस वक्त जिसरा था, और गाना पूरा रफ सा कुछ लिखा हुआ था। तो मोहित सर ने मुझे बोला कि मुझे एक वर्ड ऐसा दे दो इस गाने में जो हुक लाइन जहाँ पे आती है कि वहाँ पे एक दो लोग, मतलब एक ऐसा मीनिंग आ जाए उस बात का कि हम लोग जिंदगी भर साथ नहीं रहने वाले, बट इस रास्ते पे जिस पे हम मिले हैं, उस रास्ते पे जितना टाइम हम चलने वाले हैं, उस एक बॉन्ड को आपको दिखाना है कि ये एक रिश्ता हमारा है, आगे जाके हमें अलग होना ही है। तो हम सफ़र बोल नहीं सकते क्योंकि काफ़ी यूज़ आ चुका है, उस मीटर में नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी, मतलब 2 घंटे तक सर के साथ बैठा रहा, उनको ऑप्शन पे ऑप्शन देता रहा। एंड सडनली जब मेरे को एक वर्ड दिमाग में आया, हमरा, जो कि बहुत काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ, मैंने मोहित सर को सुनाया, तो मोहित सर ने मुझे बोला कि ये काफ़ी बिहारी साउंड कर रहा है, क्योंकि हमरा बोलते हैं ना कि हमरा ये एक हो गया है, हमरा वो। तो मैंने कहा कि सर, इसको गाने का तरीका, जो भी इसको गाएगा ना, उसको अच्छे से गवाना पड़ेगा। देन मोहित सर ने बोला कि तू गा के बता एक बार। तो मैंने मोहित सर को जब वो गा के बताया कि, तो मोहित सर ने बोला कि हाँ, अभी ये परफेक्ट साउंड कर रहा है, इसको हमरा रखते हैं हम लोग और आगे पूरा गाना लिख दें। तो मैंने ये पूरा गाना लिख दिया, सब कुछ हो गया। गाना जब शूट पे जाने वाला था तो मोहित सर ने लास्ट के कुछ लाइंस थी वो चेंज करने के लिए मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, और फिर मैंने वो गाना उनके सामने बैठ के, जो लास्ट की जो लाइंस आती हैं उस गाने में कि डर की दीवारें टूटी, दिल का जहां दिखा है, आंखों ने आज देखा ख्वाबों का आसमान, वो लाइन मैंने फिर मोहित सर के सामने ही बैठ के लिखी थी। और हमरा कमर्शियली मुझे नहीं पता कहाँ तक गया है, कहाँ तक चल रहा है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, बट हमरा, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो गाना, क्योंकि उस गाने का जो म्यूज़िक है, उसकी जो बीट्स हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत टेम्पटिंग लगती है। मुझे प्राउड फील होता है कि यार, एक न्यू एज गाना मैंने लिखा है, जो एक लीक से हटके गाना। लोग मुझे बोलते हैं कि हर गाने में दर्द होता है, बट इस गाने में कहीं दर्द नहीं था। तो आई एम हैप्पी कि मैंने एक इमेज अपनी तोड़ी है इस गाने के थ्रू। तो आई एम थैंकफुल टू मोहित सूरी फॉर ऑल हिज सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे हर वक्त हर जगह एक ब्रदर की तरह सपोर्ट किया, और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे उनका बहुत बड़ा मेरे पास, मतलब मेरे सर पे हाथ है। थैंक यू मोहित सर फॉर एवरीथिंग, एंड शेफाली थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू।
थैंक यू सो मच कुणाल, इट वॉज सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माई पॉडकास्ट 9XM सॉन्ग सीक्रेट, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अमेजिंग सीक्रेट्स बिहाइंड योर लवली सॉन्ग्स। हम जल्द ही मिलेंगे, आप और भी सीक्रेट्स के साथ रेडी रहिएगा। जाते जाते अ स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ यू कैन गिव अ स्मॉल मैसेज टू ऑल द लिसनर्स ऑफ 9XM विल बी रियली ग्रेट।
थैंक यू सो मच शेफाली, इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग विद यू एंड ऑल द फैंस of our songs, and thank you 9XM. I wish कि और भी podcast ऐसे आते रहें, and हम लोगों को और जितने भी गाने हमने किए हैं उनके secrets बताने का मौका मिले, और लोगों को हक बनता है वो कहानियाँ सुनने का जो उनके फेवरेट गानों के पीछे छुपी हुई रहती है। तो बहुत मज़ा आया अशफ अली आपके साथ 9XM पे।
थैंक यू,
होपफुली विल मीट सून, सी या।
Thank you for listening. Hope you enjoyed this episode of 9XM Song Secret, which is available on EPlog Media and other leading podcast platforms like Apple Podcast, Spotify, JioSaavn, and more. And do subscribe and rate us 5 stars on Apple Podcasts. Nine XM Song Secret.